श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय बारहवां मंत्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिम् यजन्ता इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विध्यकर्तारमव्ययम्। नमां कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति मां यो भिजानाति कर्म भीर्न शबध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् पूर्वहि पूर्वतरं कृतम्। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणोऽपि बोधव्यम् बोधव्यम् च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोधव्यम् गहनाकर्मणो गतिः। परब्रह्म परमात्मा आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने परम प्रिय सखा भक्त अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का यह चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसके अंतर्गत भगवान ने कर्म योग का जो एक स्वरूप है उसका वर्णन यहां पर उन्होंने किया है। और भगवान स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि अर्जुन, मैं भी इस संसार के अंतर्गत जन्म लेता हूं, अवतार लेता हूं और विविध प्रकार के कर्म भी मैं करता हूं, लेकिन मेरा जन्म और कर्म उसमें दिव्यता की भाव बनी रहती है, वो विशुद्ध रहते हैं, उनमें कोई मलिनता नहीं आती है और जो हमारे उस जन्म और कर्म के दिव्य स्वरूप को समझ लेता है, जान लेता है, वो मेरा भक्त बन जाता है, मेरा उपासक बन जाता है। और इसीलिए फिर उसे इस संसार में जन्म लेकर के नहीं आना पड़ता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मो नैत मामेति सोऽर्जुन। और इस प्रकार का जो ज्ञान है भगवान के विषय में, यह ज्ञान को प्राप्त करके भूतकाल में बहुत से लोगों ने मुक्ति को प्राप्त किया है, मेरे भाव को, परमात्म भाव को, ब्रह्म भाव को उन्होंने प्राप्त किया है। और आगे भगवान ने अपनी प्राप्ति का उपाय अत्यंत सरल और सुगम रूप से यह बताया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कि मैं लोगों के लिए, संसार के अंतर्गत जो मनुष्य हैं, उन्हें सबके लिए मेरी प्राप्ति कितनी सुगम है, कितनी सुलभ है, कि वो जिस भाव से चाहें उस भाव से मेरी भक्ति कर सकते हैं, मेरी उपासना कर सकते हैं, मेरा स्मरण कर सकते हैं। वो जिस भाव से मुझको भजते हैं, मैं उनकी भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त होता हूं और उन्हें आगे चल करके सदगति और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार भगवान ने अपनी प्राप्ति को अत्यंत सरल और सुगम बताया, लेकिन कहते हैं क्या संसार के अंतर्गत संसार के सभी जो मनुष्य हैं वो परमात्मा की भक्ति करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं? भगवान भक्तवांछा कल्पतरु के रूप में यहां अपने आप को प्रतिष्ठापित करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उन परब्रह्म परमात्मा की उपासना नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मनुष्य इस संसार के अंतर्गत जो भी भाव रखता है उस भाव से वो मेरी भक्ति कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मुझ ईश्वर परमात्मा का जो है भजन नहीं करते हैं। भगवान में राग द्वेष आदि का अभाव है और सबके ऊपर वे कृपा करते हैं, तो राग आदि द्वेषों के अभाव से रहित प्राणी मात्र पर कृपा करने वाले ये जो परब्रह्म परमात्मा है, जो सब कुछ देने में समर्थ हैं, लेकिन फिर भी जो हो संसार के अंतर्गत बहुत प्रकार के ऐसे मनुष्य हैं जो उन परब्रह्म परमात्मा की, भगवान वासुदेव की, सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा की उपासना नहीं करते हैं, इधर उधर लग जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? यदि तव ईश्वरस्य रागादि दोषाभावात् सर्व प्राणीषु अनुजिग्रिक्षायाम् तुल्यायाम् सर्व फल प्रदान समर्थे च त्वयि सति वासुदेवः सर्वम् इति ज्ञानेन एव मोक्षवः सन्त कस्मात् त्वाम् एव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते इति शृणु तत्र कारणम्। तो अब भगवान कहते हैं कि तुम उस कारण को श्रवण करो जो मेरे अतिरिक्त अन्य की उपासना करते। उपासना तो सभी लोग करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम् हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजः। संसार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए परमात्मा ने अनेक देवताओं को भी उत्पन्न किया है और वे देवता भगवान की कृपा से एक विशेष शक्ति को उन्होंने प्राप्त करके रखा है। वे शक्ति संपन्न देवता जो जगत के कार्य का संचालन करते रहते हैं, उनके जो विविध स्वरूप हैं, इंद्र, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु आदि, ये सब जो देवता हैं, तो इन देवताओं की उपासना संसार के अंतर्गत मनुष्य लोग करते हैं। भगवान तो इन सबके ऊपर हैं, सर्वोपरि हैं, लेकिन कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। संसार के जो मनुष्य है उनको ही नवीन कर्म करने का अधिकार प्राप्त है, यानी पहले के किए हुए जो कर्म उसका फल प्रारब्ध के रूप में भोगते हुए वे नवीन कर्म कर सकते हैं, ऐसा अधिकार मनुष्य को प्राप्त है। अब ये जो मनुष्य है जो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, अब उसके अंतर्गत और जो विशेष फल आदि की प्राप्ति की इच्छा होती है, लेकिन वह इच्छा कैसी होती, बोले सांसारिक होती है, सांसारिक विषय आदि होती है। तो जो कर्म से सिद्धि जिसकी होती है, कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्तः, जो कर्म के द्वारा जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की इच्छा रखने वाले जो मनुष्य लोग हैं, कर्मणाम सिद्धिम, कर्मजन्य सिद्धि से प्रभावित होते हैं। ऐसी लोगों में धारणा बन गई है कि संसार में यदि कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, कर्म करके ही ये सब फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कर्म के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वह सांसारिक ही फल प्राप्त होता है, जो एक देशीय होता है, अनित्य होता है और कुछ समय के बाद वो नष्ट भी हो जाता है। वो सर्वदेश सर्वकाल और अविनाशी फल नहीं होता है। कारण कि जो उसका साधन कर्म है वो कर्म भी अनित्य ही है, सर्वदेश सर्वकाल इत्यादि से युक्त नहीं है, किसी देश विशेष में किसी काल विशेष में किसी किसी व्यक्ति के द्वारा वो कर्म किया जाता है। तो ऐसे अनित्य कर्म रूपी साधन से जो फल प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, अनित्य ही होगा, वह नित्य नहीं हो सकता है। इसलिए उनके जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है वो कभी छूटता नहीं। इंद्र आदि पद की प्राप्ति कर्म से होती है, लेकिन इंद्र से इंद्र बन करके भी कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है, फिर इस संसार में लौट करके आता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो यह जो संसारिक विषय की जो कामना है, भोग जिसे कहते हैं, उन भोगों के भोगने की इच्छा जिन लोगों के मन में बनी हुई रहती है कि हमें धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि जो संसार के भोग हैं, इन भोगों के प्राप्ति की इच्छा और वह कर्म का ही फल है, इस प्रकार का जो भोग है वो कर्म का ही फल है, और उसके देवता सब अलग अलग हैं। किसी प्रकार के कर्म का फल कोई विशेष देवता है, कोई अलग देवता है। तो इसलिए कर्म जन्म सिद्धि से प्रभावित होकर के लोग जो दूसरे प्रकार के देवता हैं, अर्थात उस परब्रह्म परमात्मा से अलग जो देवता है, उनकी वे उपासना करते हैं। कांक्षन्ता अभिप्सन्तः कर्मणां सिद्धिं फल निष्पत्तिं प्रार्थयन्त एन्त हि अस्मिन् लोके देवता इन्द्र अग्नि आद्यः। कर्मों से सिद्धि चाहने वाले अर्थात फल की प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य इस लोक में इंद्र, अग्नि, चंद्र, सूर्य आदि जो देवता हैं, उनकी वे उपासना करते हैं। यहां पर देवता मतलब जो परब्रह्म परमात्मा से अलग है जिनका स्वरूप, अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते ते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मीति न सा वेदा यदा पशुरेव सा देवानाम। जो मुझ परमात्मा से अलग स्वरूप वाले जो देवता हैं उनकी वो उपासना करते हैं, तो वो देवता अलग है परमात्मा से, और जो उनकी उपासना करने वाले हैं वो भी अलग ही हैं। उपास्य स्वरूप उनके वो देवता हैं और उनकी वे प्रसन्नता चाहते हैं कि उनकी प्रसन्नता से मुझे अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी, तो वे उन देवताओं की उपासना वे करते हैं। तो देवता लोग उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे मनुष्य पशु आदि का पालन करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं और उनको अपने अधीन बना करके रखते हैं। उसी प्रकार से वे देवता लोग भी, उपनिषद के अंतर्गत ये बात आती है कि वे अपने उपासकों को अपने अधीन बना करके रखते हैं और जो उनकी उपासना करते हैं विधि पूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों का जो फल है वो देवता उन्हें क्या है प्रदान करते हैं। और ऐसा यहां बताया क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में मनुष्य के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके विधि पूर्वक सांगोपांग जो कर्म किया जाता है उस फल की प्राप्ति तुरंत हो जाती है। और परब्रह्म परमात्मा की प्रसन्नता और उनकी कृपा में बहुत समय लग जाता है। ऐसे एक बहुत बड़े विद्वान की बात आती है कि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति भगवत दर्शन प्राप्त करना था तो उसके लिए उन्होंने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ किया। बहुत लंबे समय तक वो भगवान की भक्ति अनुष्ठान पुरुषचरण इत्यादि करते रहे लेकिन उनको भगवत विषयक बोध प्राप्त नहीं हुआ तो वे बड़े दुखी हो गए और उन्हें लगा कि अब अपने इस शरीर को त्याग देना चाहिए, इस शरीर से मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसा विचार करके वे गंगा जी में अपने शरीर को त्याग करने के लिए जा रहे थे कि उन्हें एक व्यक्ति मिल गया और उसने कहा महाराज ये आप जो कार्य करने जा रहे हो ये तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, इस प्रकार शरीर त्याग नहीं करना चाहिए। तो उनको लगा ये कैसे समझ गया कैसे जान गया कि मैं शरीर त्यागने जा रहा हूं। तो उसने कहा मुझे एक प्रकार की सिद्धि प्राप्त है, मैं सामने वाले के मन की बात को जान लेता हूं समझ लेता हूं, इसलिए मैं समझ गया आपके मन की बात को। तो उन्होंने सोचा है तो हमसे भी श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो कहा तुम क्या करते हो क्या करते हो। बोले हमने यक्ष की उपासना की है और उसके कृपा से मुझे ये सिद्धि प्राप्त है। तो उन्होंने कहा तो फिर हमें भी बताओ। तो उसने बता दिया और 40 दिन के अनुष्ठान में यक्ष की सिद्धि उन्हें प्राप्त हो गई। लेकिन वो यक्ष उनके सामने उपस्थित नहीं हो सका, दूर से ही कहने लग गया वरदान मांगो वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा भाई तुम सामने तो आओ। कहा नहीं मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता हूं क्योंकि तुमने जो पहले का जो पुरस्करण किया है जो अनुष्ठान किया है उसमें इतना तेज है इतना प्रभाव है कि उसके आगे मैं ठहर नहीं सकता हूं, इसलिए तुमको जो इच्छा हो जो कामना हो तो वह तुम मांग लो। तो इनके मन में तो संसार विषय कोई कामना थी नहीं, ये तो भक्त थे। तो उन्होंने कहा हमें संसार विषय कोई कामना तो है नहीं कि मैं पद प्रतिष्ठा आदि की इच्छा करूं, मुझे तो भगवत दर्शन की लालसा है। तो उसने कहा ये मैं नहीं करा सकता, यदि मैं तुम्हें करा सकता तो पहले मैं स्वयं नहीं कर लेता। और ऐसा कह करके वो चला गया। तब इन्हें अपने उस साधना का प्रभाव मालूम पड़ा और फिर उन्हें एक संत मिले और उन्होंने कहा इतनी जल्दी घबराना नहीं चाहिए, तुम वृंदावन में जाओ और वहां जो पहले साधना करते थे, भगवान नाम मंत्र का जप करते थे, उसको तुम वहां पर करो, वहां तुम्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो फिर उन्होंने वैसा ही किया और फिर उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, ऐसी कथा आती है। लेकिन यहां कहते हैं कि देवता तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो आजकल के आदमी को समय जिसमें अधिक लगे वो कार्य उनको पसंद हो नहीं। हर चीज में उन्हें क्या है, शीघ्रता चाहिए कि हम तुरंत करें और उसका फल हमको प्राप्त हो जाए। तो भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, तो उसके लिए तो भगवान कहते हैं कि अनेक जन्मों की साधना लग जाती है। अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति पराम गतिम, बहु नाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव शर्ममिति सा महात्मा सुदुर्लभ। लेकिन जो तुरंत का तुरंत फल चाहते हैं तो वे इन देवताओं की उपासना करते हैं जो उस परब्रह्म परमात्मा से भिन्न है। तो उनसे यही भोग रूप जो फल है उसको वो प्राप्त करते हैं। तो ऐसे उन भिन्न रूप देवताओं का पूजन करने वाले, सांसारिक फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य जो इस संसार में शीघ्रता से प्राप्ति हो जाती है, उन देवताओं की वे उपासना करते हैं। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो ये जो देवता है, जब इनकी कोई उपासना करता है, इनकी भक्ति करता है, तो वे उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसका जो भी अभीष्ट फल होता है वो उसको प्रदान करते हैं। अब उस फल के द्वारा उस व्यक्ति का हित होगा कि अहित होगा, ऐसा वो विचार नहीं करते। जो इच्छा किया उसकी वे प्राप्ति करा देते। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। देवता तो जैसे व्यापारी होता है ना, आप धन आदि लेकर के जाएं और उससे जो वस्तु आप मांगेंगे वो धन लेकर के वो वस्तु आपको दे देगा। अब उस वस्तु से आपका हित हो चाहे अहित हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन भगवान उस पिता के समान है, वह अपनी भक्ति करने वाले को क्या फल देना है, क्या नहीं देना है, किसमें उसका अहित है, किसका अहित है, ये विचार करते हुए उसे फल की प्राप्ति कराते हैं। रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है प्रारंभ में ही, नारद जी का। और नारद जी कौन है, भगवान के परम भक्त हैं, परम उपासक हैं। तो उनके मन में विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। नारद मोह का प्रसंग आता है। तो उस सुंदर राजकन्या को देख करके विवाह करने की इच्छा उनके मन में उत्पन्न हो गई और वह राजकन्या उनका वरण करे, इसके लिए उन्होंने भगवान की उपासना किया, भगवान को स्मरण किया और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। बोले क्या बात है, क्यों, तुम इस प्रकार मेरी भक्ति उपासना करते हो। नारद जी ने सब बात बता दिया कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, आप अपना रूप हमको दे दीजिए कुछ समय के लिए कि वो राजकन्या मेरा वरण कर ले। लेकिन नारद जी एक बात कह गए कि जहिविद हो ये नात हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान ने कहा अच्छी बात है और नारद जी वहां से आ गए। लेकिन वहां नारद जी का जो मनोकामना थी वो पूर्ण नहीं हुई, उनका विवाह नहीं हुआ। तो भगवान क्यों ऐसा, अगर वे और कोई देवता की उपासना किए होते और भक्ति किए होते तो देवता अवश्य उनकी मदद करता और विवाह उनका हो जाता। जैसे बहुत से लोग विवाह के इच्छुक अनेक प्रकार की भक्ति और उपासना करते हैं, लेकिन नारद जी ने भगवान की भक्ति किया, वे तो भगवान के भक्त हैं। तो भगवान ने देखा कि नारद जी जिस की कामना कर रहे हैं उसमें उनका हित नहीं है, इसलिए भगवान ने उन्हें उनकी इच्छा के अनुरूप वो फल प्रदान उनको नहीं किया। तो यही बात यहां पर बताते हैं कि देवता लोग जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और इस संसार के अंतर्गत कर्म का फल ही प्राप्त होता है। तो इसलिए लोग भगवान कहते हैं कि मेरी उपासना ना करके, मेरी भक्ति ना करके जो दूसरे देवता आदि हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उनको वे भक्ति और उपासना करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः, क्षिप्रम् हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो यह जो सिद्धि है ये कर्म जन्म सिद्धि है, ये सिद्धि का मतलब वही भोग पदार्थ इत्यादि। वास्तविक जो सिद्धि है वो तो परमात्मा की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, वह उन्हें प्राप्त नहीं होता है, वह कर्मजन्य है ही नहीं कि कर्म से उसकी प्राप्ति की जा सके। वह तो भगवत कृपा से प्राप्त होता है, ज्ञान से प्राप्त होता है। तो ये कर्मजन्य जो सिद्धि है उसकी जो इच्छा रखते हैं वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना और उनकी भक्ति करके और अपने मनोरथ को परिपूर्ण करते हैं, लेकिन उन्हें इस संसार के चक्र से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है, जबकि मनुष्य जीवन मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है। जो भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैत मामेति सो अर्जुन। तो इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा की उपासना और दूसरे लोगों की उपासना और भक्ति में अंतर है, भगवान ने बताया। अब आगे कहते हैं जो भगवान ने कहा था ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः। मेरा जन्म भी दिव्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और भगवान जो कर्म की बात करते हैं तो वह कर्म भी भगवान के दिव्य है। भगवान के कर्म क्या है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम्। तो भगवान यहां पर अपने कर्म की बात करते हैं कि भगवान के ये कर्म भी दिव्य हैं, तो वह कर्म की दिव्यता किसका स्वरूप कैसा है, क्या करते हैं? भगवान कहते, देखो मैंने ही इस संसार के अंतर्गत चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, चार जो वर्ण हैं मनुष्य हैं सभी, लेकिन उनमें कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है और कोई शूद्र है। इन चारों वर्णों का नाम जो चातुर्वर्ण है, ये गुण कर्म विभाग सह सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के विभाग से एवं कर्मों के विभाग से ये चारों वर्ण मुझ परमात्मा के द्वारा ही उत्पन्न किए गए। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। तो वेद के अंतर्गत इस प्रकार से ब्राह्मणो समुखमासीद बाहु राजन्य पूर्व तद वैश्या पदभ्याम शूद्रो जायत, भगवान से ही ये चार वर्ण की उत्पत्ति हुई है, ये भगवान का कर्म है। अब ये जो भगवान की जो कर्म मनुष्य को उत्पन्न करते हैं, मनुष्य को चार भागों में विभाजित करते हैं और भी दूसरे जगत को भी उत्पन्न करते हैं, ये जगत को भी उन्होंने उत्पन्न किया है, वही परब्रह्म परमात्मा है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पर्यन्त संविशन्ति तद् विजिज्ञासु तद् ब्रह्म। तो ये उस परमात्मा के कर्म, तो ये है परमात्मा का जो कर्म है। भगवान कहते हैं कि ये एक दिव्य है। ये दिव्य किस प्रकार से, कैसे स्वरूप है कि जो करने वाले को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है, करने वाले को अपना जो एक बंधन का स्वरूप होता है उसमें वो बांधता नहीं है। इसलिए भगवान कहते तस्य कर्तारमपि माम विद्य अकर्तारमव्ययम्। इस संपूर्ण संसार को बनाने वाला, इस संपूर्ण संसार को चलाने वाला, इस संपूर्ण संसार को अपने में लय करने वाला, ऐसे जो उत्पत्ति स्थिति और लय, यह जो तीन कार्य मेरे द्वारा होते हैं, ये देवता कोई नहीं करता है, ये देवताओं का कार्य नहीं है। देवता तो भगवान के बनाए हुए संसार में भगवान की संकल्प शक्ति से उत्पन्न हो करके, और ये जगत का कार्य है ये संभालते हैं। इस संसार को, अखिल ब्रह्मांड को परब्रह्म परमात्मा ने उत्पन्न किया है और वे ही इसका पालन करते हैं, वे इसका लय भी करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो भगवान का जो कर्म है वो कितना बृहद है और है कितना विस्तृत स्वरूप है उनका कर्म। लेकिन भगवान कहते हैं कि इतना सब कुछ करते हुए भी तस्य कर्तारमपि माम विद्य अकर्तारमव्ययम्। हे अर्जुन, मुझे तुम अकर्ता के रूप में ही जानो, ये कार्य मैं करता हूं फिर भी मैं क्या है, अकर्ता बन करके रहता हूं। कर्तृत्वाभिमान मेरे अंतर्गत नहीं रहे। तो इस प्रकार से जो भगवान इतना सब कुछ करते हुए और फिर भी अकर्ता भाव में रहते हैं, क्योंकि जो उनका वास्तविक स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद, वे अपने उस स्वरूप में स्थित रहते हैं और उनके द्वारा ये सब कार्य हो जाता है। तो इसलिए वे सब कुछ करते हुए भी अकर्ता भाव में रहते हैं और इस प्रकार जो कर्म करता है वो उसके बंधन का कारण नहीं बनता है। तो भगवान है कहते हैं कि यही जो है हमारे कर्म की दिव्यता है और कि वो मुझे बांध नहीं सकता है, मेरे बंधन का कारण नहीं बनता है। तो यह है भगवान के जो दिव्य कर्म है उसका वर्णन। कर्म तो कर्म ही होता है लेकिन वो दिव्य तब बन जाता है अथवा योग जिसको कर्म योग कहते हैं कि वो बंधन का कारण नहीं बने, वो मोक्ष का साधन बन जाए, हमारे अंतःकरण की शुद्धि का कारण बन जाए तो वो कर्म दिव्य कर्म माने जाएंगे। वही कर्म योग के रूप में माना जाएगा। तो भगवान के जो कर्म होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं और ये भगवान इसलिए कह रहे हैं कि इसी प्रकार मेरे जो भक्त होते अर्थात तुम जो अर्जुन हो, तुमको भी जो अपने कर्तव्य कर्म का परिपालन है वो इसी प्रकार से तुमको करना चाहिए कि वो कर्म दिव्य रूप में रहे, वो कर्म योग बन करके मुक्ति का साधन बने तो तुम्हारा भी क्या है परम कल्याण होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।